सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।
श्रीमद्भागवतम पहला स्कंध पहला अध्याय मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 15। यत्
यत्
पाद संशयाः
संशयाः
सूत
सूत
मुनयः
मुनयः
प्रशमायनाः
प्रशमायनाः
सद्यः
सद्यः
पुनन्ति
पुनन्ति
उपस्पृष्टाः
उपस्पृष्टाः
स्वर्धुनी
स्वर्धुनी
आपः
आपः
अनुसेवया
अनुसेवया।
यत्पादसंशयः सूत मुनयः प्रशमायनाः
मुनयः प्रशमायनाः
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः
स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया
स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया।
यत्पादसंशयः सूत मुनयः प्रशमायनाः
मुनयः प्रशमायनाः
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः
स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया
यत्पादसंशयः सूत
मुनयः प्रशमायनाः
मुनयः प्रशमायनाः
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः
स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया
स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया।
किताब है किसी के पास?
यत्पादसंशयासूत
मुनयः प्रशमायनाः
सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया यत्पादसंशयासूत मुनयः प्रशमानया सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया।
यत् जिसके
जिसके
पाद
चरण कमल
संशयाः
शरणागत
सूत
हे सूत गोस्वामी
मुनयः
बड़े बड़े मुनिगण प्रशमायनाः
परमेश्वर की भक्ति में लीन सद्यः
तुरंत
पुनन्ति पवित्र हो जाते हैं
उपस्पृष्टाः
केवल संगति से
स्वर धुनि
पवित्र गंगा का आपह
जल
अनुसेवया उपयोग में लाने से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से तुरंत पवित्र हुआ जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई शुद्ध हो, शूद्र हो या स्त्री हो या वैश्य, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस जा सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं। जिससे ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों की प्रतिनिधि होने का संकेत मिलता है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरित हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उपप्रभु उपभगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्कपट शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं। जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाती है। ओम अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानं शरशलां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वगुणातीतं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीपते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में नैमिषारण्य में एकत्र हुए मुनियों ने भगवान के पवित्र नाम का गुणगान किया था और बताया था कि जो अनजाने में भी एक बार भगवान का नाम लेता है वो तुरंत ही इस भवसागर से मुक्त हो सकता है, इस बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्कर से, संस्कृति से मुक्त हो सकता है। और पावन करने वाले वस्तुओं में वर्णन अपना आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान का नाम तो पावन करता ही है, सबसे पावन वस्तु है। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरेर्नामैव केवलम। ये सुंदर भजन है कि हरि का नाम जो है ये मधुर वस्तुओं में से सबसे मधुर है। मधुरम मधुरेभ्योपि, मधुर वस्तुओं में से सबसे मधुर वस्तु है हरि का नाम। मंगलेभ्योपि मंगलम, मंगल वस्तुओं में से सबसे मंगल वस्तु है हरि का नाम। पावनम पावनेभ्योपि, पावन वस्तुओं में से सबसे पावन वस्तु है भगवान श्री कृष्ण का नाम। सबसे पवित्र चीज है ये, तो पवित्र कराने वाले वस्तुओं में से और पवित्र वस्तुओं में से भगवान का नाम सबसे पवित्र माना जाता है। तो भगवान सबसे पवित्र है और उनकी तुलना सूर्य से की जाती है। और हमें यहाँ तो अनुभव है कि सूर्य के किरणें इतने तेजस्वी, इतने शक्तिशाली और इतने पवित्र होते हैं कि विष्ठा या मूत्र को भी पवित्र कर देती हैं, उसको मिट्टी या जल बना देती हैं। जहाँ विष्ठा होता है वो विष्ठा का परिवर्तन भी मिट्टी में हो जाता है, और इतना ही नहीं वो मिट्टी जब बन जाता है वो बाकी के मिट्टी में मिल जाता है तो वो मिट्टी को और भी उर्वरा, उसकी शक्ति बढ़ा देता है। तो एक प्रकार का ये खाद उत्पन्न हो जाता है जो मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, मिट्टी के शक्ति को बढ़ा देता है। तो जो वस्तु पहले गंदा माना जाता है, अपवित्र माना जाता है, जिसका स्पर्श करने से या जिसका त्याग करने से भी उसके बाद स्नान करना पड़ता है, ऐसे अशुद्ध वस्तु को सूर्य के किरणें ऐसे शक्ति प्रदान करती है, उसको शुद्ध कर देती है कि वो जमीन को बिल्कुल ताकतवान बनाता है। जिस मिट्टी से उत्पादन अनाज का हो सकता है, जिससे हमारा जीवन यापन हो सकता है। तो जो मूत्र और जो विष्ठा का स्पर्श करने से भी आदमी को स्नान करना पड़ता है, जिसको देखने से भी आदमी को घृणा होती है, ऐसे विष्ठा को सूरज की किरणें, सूरज अपने किरणों के द्वारा ही शुद्ध कर देता है। और सूरज इतना दूर होते हुए भी, लाखों लाखों मील दूर होते हुए भी यहाँ अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करता है। ये सूरज की शक्ति है। परंतु साथ साथ में सूरज अशुद्ध नहीं होता है, ये चमत्कार है। सूरज अपने किरणों के द्वारा अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श करता है अवश्य, उनको शुद्ध करता है, और उनको शुद्ध करते करते अपने आप अशुद्ध नहीं होता है, वो शुद्ध ही रहता है। ये कितना चमत्कार है, ये सूर्य की शक्ति है। ये केवल ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी वस्तु कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान है, भगवान है अपाप विद्धम, शुद्धम अपाप विद्धम। ईश उपनिषद में कहा गया है कि भगवान सूर्य के समान है। अनेक दृष्टि से भगवान की तुलना सूर्य से की जाती है, और इस दृष्टि में, इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भगवान सूर्य के समान इसलिए हैं कि वो सबको पवित्र करते हैं। उनके संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है। जैसे जो भी गंदा वस्तु सूरज के संपर्क में आता है वो शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो भी कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं, किसी भी तरह से उनके विग्रह के संपर्क में, उनके नाम के संपर्क में, उनके लीलाओं के कथाओं के संपर्क में, उनके ग्रंथों के संपर्क में, उनके भक्तों के संपर्क में, वो भी शुद्ध हो जाते हैं। और कृष्ण तो सबको शुद्ध करा देते हैं, हर वस्तु को शुद्ध करा देते हैं, हर व्यक्ति को शुद्ध कराते हैं, परंतु कृष्ण कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार श्री कृष्ण करते हैं, परंतु उनके पापों का फल कृष्ण को नहीं लगता है। ये है कृष्ण की शक्ति। तो कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो कृष्ण के संग में होते हैं, कृष्ण का संपर्क कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी वही शक्ति आ जाती है। जिस प्रकार से एक करंट होता है, बिजली होती है, यदि हम ऐसे बिजली के वायर को, तार को हम छू लेते हैं तो बिजली हमारे अंदर भी बहने लगती है, और कोई हमें यदि स्पर्श करेगा तो उसको भी बिजली लग जाएगी। ऐसे बम्बे में हुआ था, बड़ा बाढ़ हो गया था बम्बे में थोड़े साल पहले, और पानी सारे शहर में इतना भर गया, और ऐसी कथा हमको कोई बता रहे थे, उनके पहचान में थे, कोई पड़ोसी लड़का था, उसका दुकान था, और उसके दुकान में पानी भर गया, और किसी न किसी से कोई तार खुल गया, वो करंट जो है वो पानी में आ गया, और ये लड़का पानी में गया तो उसको करंट लग गया। उसको बचाने के लिए कोई दूसरा आदमी उसको पकड़ने गया, उसको भी करंट लग गया, तो दोनों मर गए, हालांकि वो दूसरा आदमी पानी में नहीं था। तो ऐसे करंट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा है, भगवान की भक्ति का करंट जो है, बिजली जो है, वो गुरु शिष्य परंपरा में चलते आता है। जैसे ऊर्जा उत्पादन जो होता है वो किसी विशाल ऊर्जा घर में होता है, जैसे जहाँ बहुत ऊपर से पानी गिरता है, उसका परिवर्तन फिर वो कोई यंत्र के द्वारा बिजली में करते हैं, वो तो बहुत बड़े पैमाने पे ऊर्जा का उत्पादन होता है। हमारे घर में उतने ऊर्जा की जरूरत नहीं होती एक बल्ब चलाने के लिए। एक बल्ब लाइट हमको चलाना है तो ऊर्जा घर की सारी ऊर्जा आती तो वो बल्ब तो फूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वो बहुत ज्यादा ऊर्जा है। हमको कितना ऊर्जा चाहिए? 40 वाट का बल्ब चाहिए। तो वो पूरा जो बिजली है उसका कोई काम नहीं है हमको, उससे हम सहन नहीं कर पाएंगे, वो एक बल्ब उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ता है? उस ऊर्जा को धीरे 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 से कम करते 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 हमारे घर में ऐसे कुछ होता है, बल्ब का एक स्विच होता है, उसमें हम डालते हैं उसको, फिर वो उतना बल्ब जल जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो बिजली को नीचे लाते हैं उसको सब स्टेशन बोलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद फिर हमारे यहाँ तक पहुँचता है। तो उसी प्रकार से भगवान की शक्ति उस ऊर्जा घर के समान बहुत ज़्यादा है। भगवान का प्रत्यक्ष स्पर्श हम कैसे कर सकते हैं? भगवान इतने शक्तिशाली, उस शक्ति को हम सहन नहीं कर पाएंगे। परंतु भगवान ऊर्जा घर के समान अपनी शक्ति को भक्तों के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो प्रकाशित करते हैं, वो उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर वही शक्ति साधारण व्यक्तियों तक पहुंच सकती है। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरित हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं, और वे उन पतितात्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। इसका मतलब है भगवान ने ठान लिया होता है कि इन बद्ध जीवों को मैं मेरे धाम में ले जाना चाहता हूँ, ये अभी तैयार है, संपर्क में आने के लिए मेरे भक्तों के। तो देखिए, भक्तों के संपर्क में आना ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान के किसी भक्त को मिल जाता है, ये बहुत विशेष बात है। अंतर्यामी है भगवान, परमात्मा है, हमारे हृदय में स्थित परमात्मा हमारे भ्रमण को नियंत्रित करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानाम यंत्रारूढानि मायया। ये शरीर एक माया द्वारा रचित एक यंत्र है और इसका नियंत्रण कर रहे हैं हमारे हृदय में स्थित परमात्मा रूपी भगवान। इसलिए भक्तों से जब मिलना होता है तो वो परमात्मा ऐसी योजना बनाते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि हम भक्तों को मिल सके। केवल ऐसे ही लोग भगवान के भक्तों को मिलते हैं, जैसे प्रभुपाद हम बताते हैं, जिनको भगवान ने चुना है। क्यों चुना है? वो चाहते हैं कि अभी वो मेरे धाम में आने के लिए योग्य हैं, हालांकि इस समय बद्ध अवस्था में है, परंतु मैं इनको ले जाना चाहता हूँ मेरे धाम में। लेकिन प्रत्यक्ष नहीं ले जा सकता, मैं तो ऊर्जा घर हूँ, डायरेक्ट बिजली 400 या 4000 वोल्ट का देने से आदमी तो खत्म हो जाए। गुरु शिष्य परंपरा से उसको देना पड़ेगा, फिर वो भक्तों के संग में उस भक्त को, उस व्यक्ति को ला देते हैं। फिर वो व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में आता है और धीरे धीरे से फिर भक्ति के पथ में लग के उसका हृदय का शुद्धिकरण होता है और भगवान के संपर्क में आता है, भक्तों के द्वारा, नाम के द्वारा, विग्रह के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा इत्यादि। तो ये भगवान की योजना है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का प्रयोग करते हैं इस भौतिक जगत में सारे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो अपनी ही शक्ति को भगवान अपने भक्तों में प्रदान कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरित हैं। उतना आदर ऐसे शुद्ध भक्तों को दिया जाता है क्योंकि वो भगवान के समान है, भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि हैं। ऐसे यह तात्पर्य में भी भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय जो व्यक्ति ग्रहण करता है वो तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन भगवान का चरण कमल कैसे प्राप्त करना चाहिए? प्रभुपाद जी बोलते हैं, उनके भक्तों के आश्रय को स्वीकार करके हम भगवान के आश्रय को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को भगवत संगी कहते हैं, जो भगवान का संग करते हैं उनको भगवत संगी कहते हैं। और ऐसे भगवत संगियों का संग करना चाहिए, भगवत संगी संग। इसलिए श्रीमद् भागवत में श्लोक है, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवन, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किम उताशिषः। इसका मतलब है कि जब हम भगवत संगियों का संग करते हैं तो ऐसे लवेण अपि, एक लव मात्र, एक क्षण से भी कम, हम ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो इसकी तुलना नहीं की जा सकती है किन चीजों से? एक तो न स्वर्गम, स्वर्गलोक के प्राप्ति से नहीं की जा सकती है, न अपुनर्भवम, न इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने से भी, मुक्ति से भी हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे भगवत संगियों का जब हम एक क्षण से भी कम संग करते हैं तो ऐसे क्षण मात्र संग का मूल्य स्वर्गलोक की प्राप्ति और मुक्ति के प्राप्ति से भी कहीं ज्यादा अधिक माना जाता है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। मर्त्या नाम किम उताशिषः, तो इस मर्त्य लोक के, इस पृथ्वी लोक के जो साधारण आशीष हैं, आशीर्वाद हैं, धन प्राप्त करना, भोग प्राप्त करना, बड़ा घर गाड़ी बंगला प्राप्त करना, इनका तो कहना ही क्या है, ऐसा भागवत का सिद्धांत है। तो देखिए भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कितना मूल्यवान होता है। कभी कभी भक्तों के संग में रहते हुए हम इसको साधारण समझ लेते हैं। जिस चीज को हम बार बार दिन भर लेते हैं उसका मूल्य कभी कभी याद नहीं रहता है हमको मन में, हम उसको सहज समझ लेते हैं, साधारण समझ लेते हैं, परंतु कल्पना नहीं करते हैं कि यह कितना मूल्यवान है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? ज्यादा निकट आने से एक प्रकार की द्वेष या घृणा भी उत्पन्न हो सकती है। ये हमारी दृष्टि भक्तों के प्रति साधारण भौतिक हो सकती है। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि अग्नि के और शुद्ध भक्तों के ज्यादा निकट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, हम साधारण दृष्टि से देखेंगे। प्रभुपाद के निकट में रहने वाले जो भक्त थे कभी कभी उनका पतन हो गया था, जो उनके सेवक रहते थे कभी निजी सेवक, क्यों वो देखते ये भी खा रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, साधारण दृष्टि रहती है। अनेक ऐसे जो उनके बिल्कुल निकट थे उनका पतन हो गया, यहाँ तक कि जो चैतन्य महाप्रभु के स्वयं जो सेवक थे उनका भी पतन हो गया। जैसे काल कृष्णदास थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके संग में गए थे दक्षिण भारत की यात्रा में, भट्टाधारी स्त्रियों के द्वारा उनका पतन हो गया, फिर चैतन्य महाप्रभु को वहां जाके स्वयं उनको हाथ पकड़ के खींच के उनको वहां से उनके बीच में से रक्षा करके खींच के ले जाना पड़ा, और वो लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उन्होंने अपने माया शक्ति के द्वारा अपने आप को और काल कृष्णदास को भी बचा लिया और वहां से निकल पड़े। तो स्वयं कृष्ण का संग करने वाला व्यक्ति भी कभी कभी माया के चंगुल में फंस सकता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि मैं तो स्वयं भगवान के संग में हूं। इसलिए जब हम ज्यादा निकट रहते हैं बार 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 किसी व्यक्तियों के संग में, उनको साधारण समझने लगते हैं। जब भगवान भी यह रहते थे, वो अवतार लेके आए, तो उनका रहन सहन, बोल चाल, हाव भाव, उठना बैठना, वो साधारण लोगों के संग में था, तो अनेक लोगों ने उनको साधारण ही समझा, इसलिए कभी कभी अपराध करने लगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गृहस्थ थे तो उनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी उनको गलत समझा, ये क्या है, ये तो कैसे बोल रहा है गोपी गोपी। एक बार वो अपने भाव में थे, वृंदावन के भाव में थे, और जब कृष्ण वृंदावन के विरह में होते हैं तो वो ब्रजवासियों को याद करते हैं, विशेष करके गोपियों को भी याद करते हैं, तो वो गोपी 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 कह रहे थे। तो एक विद्यार्थी आए जो ब्राह्मण थे, सभी तो विद्यार्थी ब्राह्मण ही थे, तो बोलने लगे कि आप ये क्या गोपी गोपी क्या बोल रहे हो, शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेने से समस्त पुण्य का उदय होता है, परंतु गोपी गोपी नाम लेने से क्या होगा। वह स्वयं कृष्ण को ही सिखा रहे हैं कि कृष्ण का नाम लेने से क्या फायदा होता है। तो महाप्रभु तो उस समय वृंदावन के भाव में थे, विरह के भाव में थे, वो भाव में आके भाव विभोर होकर उन्होंने सोचा ये मेरा भाव को भंग करने आया है और ये क्या बोल रहा है। तो उस भाव में उन्होंने लाठी उठाई और विद्यार्थी का पीछा करना शुरू कर दिया। महाप्रभु शरीर में बड़े हृष्ट पुष्ट थे, लंबे चौड़े थे बहुत, और जब उठे आक्रमणात्मक भाव से आगे बढ़ने लगे लाठी लेकर, तो वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। और खूब तो चैतन्य महाप्रभु को तो अपने उनके जो अन्य भक्त थे उन्होंने देखा, अरे क्या हो रहा है, बड़े मुश्किल से उनको पकड़ा, रोका, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, फिर उनको भाव से उस भाव से बाहर निकाला, फिर महाप्रभु बड़े शर्मिंदा हो गए। लेकिन उधर वो ब्राह्मण जो है वो भागते हुए दूसरे ब्राह्मणों के संग में गया, उनके सभा में पहुंचा, बिल्कुल थका हुआ गहरी सांस लेता हुआ पहुंच गया, थक थक बड़े भारी सांस ले रहा था। अन्य ब्राह्मण छात्रों ने पूछा, भाई क्या हो गया है, क्यों ऐसे भारी सांस लेके इतना थके हो, किधरे हो लग रहे हो, क्या बात है? तो वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं ये सारा घटना का वर्णन। बोलते, भाई पूछना मत, आज तो मैं बच गया, मेरी जान निकलने वाली थी, आज तो बस समझ लो कि भाग्य है। और आज वो हमारी निमाई पंडित है, वो तो ऐसे ऐसे लाठी लेके मेरे को मारने आया था, तो सारे घटना का वर्णन कर दिया। तो फिर वो विद्यार्थी सब बोलने लगे कि अरे हम भी तो कोई कम नहीं है, उनके पिता कोई जगन्नाथ मिश्र कोई वरिष्ठ और सुसंस्कृत ब्राह्मण हैं, हम मानते हैं, लेकिन हमारे पिता भी तो कोई कम नहीं है, हम भी तो विद्वान घर के हैं, और ये निमाई पंडित अभी ब्राह्मण होने के कारण उसको कैसे अधिकार होता है कि अन्य ब्राह्मणों पे हाथ उठाए, तो इसको हम तो सहन नहीं कर सकते, अगली बार यदि वो ऐसे करेंगे तो हम भी अपना हाथ उठाएंगे, हम भी देखेंगे ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो फिर निमाई पंडित सोचने लगे कि अरे ये क्या हो गया, जब उनके कानों पर यह खबर पहुंची तो वो सोचने लगे कि मैंने यहाँ अवतार लिया है सबका उद्धार करने के लिए, सबको वृंदावन के प्रेम को भेंट करने के लिए, और उल्टा ये मेरे खिलाफ ऐसे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ उठाने की बात भी कर रहे हैं, तो मुझे कुछ और कदम उठाना चाहिए। मुझे ये लोग एक साधारण गृहस्थ समझते हैं, एक साधारण ब्राह्मण समझते हैं, तो ठीक है मुझे संन्यास लेना चाहिए। संन्यास लेने से क्या होगा, कम से कम सन्यासी हूं करके मुझे नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, तो वो सन्यासी समझकर मुझे प्रणाम करेंगे, तो मैं तो भगवान हूं, तो भगवान को प्रणाम करने का लाभ उनको मिल जाएगा। ऐसे युक्ति सोची महाप्रभु ने, इसीलिए उन्होंने सन्यास लिया, क्योंकि वही सिद्धांत, जब ज्यादा निकट आ जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं उस व्यक्ति के मूल्य को, उनके स्थान को। तो उसी प्रकार से इस दुनिया में देखा जाता है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि ज़्यादा निकट आने से एक प्रकार की द्वेष या घृणा या साधारण दृष्टि उत्पन्न हो जाती है हमारे मन में। तो भक्तों के संग में रहते हुए भी ये डर रहता है, इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, भक्तों को साधारण नहीं देखना चाहिए। कभी कभी भक्तों के बीच में रहते हुए कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उसको गंभीरता से लेंगे तो हमारे भक्ति के लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। और जब हम भक्तों के संग से दूर जाते हैं तब फिर भक्तों के संग का मूल्य समझ में आता है। जैसे ये कहावत है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कि ज़्यादा निकट में आने से घृणा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से एक दूसरा भी कहावत है, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, कि दूरी से प्रेम बढ़ता है। कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि दो व्यक्तियों के बीच में संबंध ठीक नहीं रहता है, कभी कुटुंब के भीतर भी ऐसे देखा जाता है, तो बोलते चलो हम थोड़ा अलग रह लेते हैं, हम दूर रहेंगे, सास बहू अलग रहेंगे तो क्या होगा, थोड़ा प्रेम ठीक रहेगा, सास पर रहेंगे तो क्या होता है, सास बहू में रोज का झगड़ा है ना, ये तुम्हें ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, झगड़ा होता है। तो थोड़ा दूर से रहने से समय समय पर मिलते भी रहते हैं तो झगड़ा का कारण नहीं रहता है, तो संबंध बना रहता है। तो जब दूरी पर रहते हैं तब कुछ मूल्य समझ में आता है। जब भक्त भक्तों के संग में रह के कुछ भक्तियों में कमी देखते हैं भक्तों में, और कोई समस्या के कारण दूर चले जाते हैं, फिर अभक्तों के बीच में रह के उनको लगता है अरे मेरे पास कितना अनमोल रत्न था, और छोटे छोटे चीजों के लिए मैं चले गया भक्तों के संग से, और अभी यहाँ अभक्तों के संग में रहता हूँ। अब यहाँ कितना कठिनाई हो रही है, अब कितना कष्ट है, ये लोगों के साथ में उठना बैठना बिल्कुल सहन नहीं होता है, इनकी आदतें, इनके बोलने का ढंग, इनकी भाषा, इनके विचार, इनके उद्देश्य, खाना पीना कितना गंदा है, इनके बीच में हम रह नहीं सकते हैं। तभी भक्तों का संग याद आता है। इसलिए ये चीज़ें हमें याद में रखनी चाहिए कि भक्तों के संग में रह के हमें सब कुछ मिल सकता है, जीवन की हर सफलता की प्राप्ति हमको हो सकती है। ये है शक्ति भक्तों के संग में। भक्तों के संग में हमें कृष्ण मिल सकते हैं, इसलिए इसको कभी सस्ता या सहज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में वो शक्ति है जो स्वयं भगवान में है, क्योंकि भगवान ने ही उनकी भक्ति का उनके उनकी शक्ति को प्रदान किया है उनके संग में। तो भक्तों के संग में साधना करना, श्रवण कीर्तन करना, सेवा करना, ऐसे करने से निश्चित ही समय पे हमारी भक्ति में प्रगति होती रहेगी। तो इसी बात को प्रभुपाद जी यहाँ मुनिगण यहाँ पर कह रहे हैं कि जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। देखा जाता प्रत्यक्ष, हम सब भक्तों के संग में आए इसलिए हम भक्त बने, है ना? कितने जल्दी से भक्त बने हम। भले हमें भक्त बनने के लिए एक क्षण लगा हो, एक दिन लगा हो, एक साल लगा हो, 5 साल लगा हो, लेकिन कम समय है ये, बहुत हम भक्त बन गए। सारा जीवन परिवर्तन हो गया हमारा, सारे पाप करना बंद कर दिया, अभी पूरा शरणागत हो गए भगवान के, सब कुछ दुनिया के सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में बैठे हैं, पहाड़ में बैठे हैं, ज्यादा कोई इंद्र तृप्ति है ही नहीं इधर, और यहाँ बैठे हैं। कितना जल्दी परिवर्तन हो गया। उधर गंगा के तट पे बैठ के गंगा का जल पीते 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 वो बहुत समय लग जाता। इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि गंगा का जल पीने के बाद भी शुद्ध होने के लिए समय लगता है, परंतु भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं तो उनका दर्शन करने से और उनका संग करने से, उनके आदेश का पालन करने से बहुत शीघ्र शुद्धिकरण हो जाता है। जो लोग इस्कॉन में आते हैं वो प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करते हैं और उनके उन आदेशों के साथ में प्रभुपाद जी का संग करते हैं, प्रभुपाद जी की कृपा मिलती है, उनके शिष्यों के, उनके और अन्य भक्तों के कृपा प्राप्त हो जाती है, तो शीघ्र ही परिवर्तन हो जाता है। गंगार पराश होइले पाश्चात पवन, तुम्हारा दर्शन करी पवित्र कर तुम्हारे ए गुण, है ना? नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना शुद्ध भक्त के बारे में कि गंगार पराश होइले पाश्चात पवन, गंगा का स्पर्श करने से अवश्य शुद्ध हो जाएंगे लेकिन समय लगेगा, लेकिन दर्शन मात्र से हे वैष्णव गोसाई तुरंत कोई व्यक्ति पावन हो जाता है। तो ये है वैष्णवों का गुण। तो प्रभुपाद जी के शरण में आके हमें वही लाभ मिलेगा जो कि कृष्ण के शरण में जाने से होगा, क्योंकि प्रभुपाद का शरण है कृष्ण का शरण, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कृष्ण का शरण लिया हुआ है, और उनके शरण में जो भक्त है उनके भी शरण में हमें रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट के समान हमको भी करंट लग जाएगा, भक्ति का करंट हमको भी लग जाएगा, बिजली लग जाएगी, फिर हम भी जाके दूसरों को करंट दे सकते हैं। प्रभुपाद जी लेकिन इस मामले में एक चेतावनी देते हैं, एक कोई ऐसे संस्था है या एक कोई पद्धति है, अध्यात्म पद्धति, जिनकी पद्धति को शक्तिपात बोलते हैं। शक्तिपात में वो क्या कहते हैं कि गुरु आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त कर चुका होता है और वो अपने शिष्य को देखता है कि कौन योग्य है, फिर किसी योग्य शिष्य को बुलाता है और कहता है अब मेरी सारी शक्ति मैं तुमको देने वाला हूँ, और उसको स्पर्श करता है और वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के समान, बिजली के समान उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति उसमें चली जाती है और वो जो शिष्य है एकदम तेजस्वी प्रकाशमान शक्तिशाली हो जाता है, गुरु एकदम शक्तिहीन होकर गिर पड़ता है, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है क्योंकि उसने अभी अपनी सारी शक्ति शिष्य को दे दी है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण से आने वाली गुरु शिष्य परंपरा ऐसे मूर्खता की शक्ति का पात करने का नहीं है। शक्ति तो अवश्य स्पर्श से आती है, स्पर्श मतलब आदेश पालन से, तो ऐसे स्पर्श से शक्ति तो बढ़ती आगे जलती जाती है। कृष्ण की असीमित शक्ति गुरु शिष्य परंपरा में चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को दूसरे को कृष्ण के बारे में बताते हैं और वो प्रेरित हो जाता है कृष्ण की भक्ति में तो हमारी भक्ति खत्म हो जाती है, बल्कि हमारी भक्ति बढ़ जाती है। जितना हम अन्यों को भक्ति मिलाने के लिए प्रयास करेंगे, जितना हम अन्यों की भक्ति के रक्षा करने के लिए उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे भक्ति में टिके हुए रहने के लिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जितना हम भक्तों की सेवा करेंगे और अन्यों को भी कृष्ण के बारे में बताएंगे तो हमारी भक्ति उतनी ही बढ़ती रहेगी। ये है रहस्य। कोई अच्छी चीज को बढ़ाने के लिए उसको बांटना चाहिए, कंजूस की तरह रखना नहीं चाहिए। साधारण पुण्य और पाप के दृष्टि से भी, कर्मकांड के दृष्टि से भी, यदि कोई धनवान व्यक्ति है उसको अपना धन बढ़ाना है तो उसको धन को बांटना चाहिए, दान देना चाहिए। जितना वो दान देगा उतना उसको ऊपर से वर्षा होगी धन की। वो हाथ खोल के यदि देगा तो लेने के लिए भी हाथ खुला हुआ है ना, तो आएगा ऊपर से। यदि आदमी ऐसा बंद करके मुट्ठी रहता है तो दान तो धन तो जाएगा नहीं और ऊपर से आएगा भी तो उसको मुट्ठी में आएगा नहीं। तो भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए, किसी को यदि चाहिए कुछ तो उसको देना चाहिए अन्यों को, कोई भी अच्छी चीज उसके पास हो। हमारे पास ज्ञान है, शक्ति है, धन है, भक्ति है, उत्साह है अच्छी चीज के बारे में, जो भी कुछ हमारे पास अच्छी चीजें हैं वो हमको अन्यों में बांट कर लेना चाहिए। अच्छी चीज को केवल अपने लिए रखना नहीं चाहिए, तो वो शक्ति का घटन हो जाता है वो अच्छी चीज का केवल हमारे पास रहने से। लेकिन अच्छी चीजों को हम बांट के लेते हैं तो फिर वो वृद्धि सबके लिए हो जाएगी, देने वाले के लिए भी उस चीज की वृद्धि हो जाएगी, पाने के लिए भी हो जाएगी। ये है आध्यात्मिक गणित। एक में से आप एक कम करेंगे तो हम पाठशाला में पढ़ते हैं गणित कितना हो जाता है, एक में से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा, शून्य। लेकिन ये भौतिक गणित है। लेकिन आध्यात्मिक गणित क्या है, एक में से एक करने से क्या हो जाता है, कम करने से 10 हो जाता है, हमारे भी एक बढ़ जाता है। तो ये है आध्यात्मिक गणित। तो हम जब अपने आप को अन्यों की सेवा में लगाते हैं भक्ति में तो हमारी भक्ति बढ़ती है, उनकी भी भक्ति बढ़ती है, ऐसे करके भक्तों का संघ का चमत्कार है। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि जो नास्तिक लोग होते हैं या जो भक्ति के और आध्यात्मिक पद्धति के पद्धतियों से परिचित नहीं होते हैं वो समझ नहीं सकते हैं कि ये भक्तों का संग कैसा चमत्कार है, कि यहाँ संग करने मात्र से कैसे व्यक्ति के हृदय में भक्ति का उदय होता है, कैसे भक्ति उद्भूत होता है और कैसे उसका जीवन परिवर्तन होता है। ये वैज्ञानिक वगैरह अपने वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते, परंतु ये प्रत्यक्ष हम अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में कर रहे हैं, हमने किया है और करते रहे हैं और अन्यों को जीवन का भी देख रहे हैं कैसे उनका जीवन परिवर्तित होता है भक्तों के संग करने से। तो भक्तों के संग में, संगति में बहुत जल्दी हम पवित्र हो जाते हैं। लेकिन गंगा जल आदि और कई चीजें हैं, उनको भी ठीक है, ग्रहण करना चाहिए, लेकिन धीमी गति से, धीरे 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 से होता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें भक्तों के संग को बड़े आभारी हृदय से, कृतज्ञता से स्वीकार करना चाहिए। भक्तों का संग हमारे लिए एक भेंट है। जो भेंट दिया जाता है उसको ज्यादा उसमें दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि वी शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। जो हमें घोड़ा भेंट में आता है उसके मुख के अंदर नहीं देखना चाहिए। उसके मुख के अंदर क्यों देखते हैं? क्योंकि घोड़ा, बैल आदि, उनके दांतों को देखकर उसकी आयु क्या है, उसका क्या गुण क्या है, सब पता चलता है ना। आयु कितनी, दांत को देखकर, तो मुंह खोल के। तो जब कोई हमारे पास घोड़ा देने आता है तो हम देख, अरे ये ऐसा, उसका इतना दांत है, अरे ये ऐसा घोड़ा है, अरे मुफ्त में आ रहा है, ले लो, चलो आ रहा है, उसका भेंट है, इसका उपयोग कर सकते हो, तुम्हारा चल के फिर के बहुत तुम्हारा काम हो सकता है। ऐसे एक कहावत है, ये मुहावरा है। तो उसी प्रकार से भक्तों का संग ये भगवान का अनमोल भेंट है हमारे लिए। ये भक्तों के संग से हमारे जीवन की परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है, सारा आनंद हमको मिल सकता है, सारे जीवन की समसिद्धि, भगवान की शुद्ध भक्ति हमको मिल सकती है। और जीते जी भी हमें एक ऐसे जीवन शैली प्राप्त होती है जो बाहर की दुनिया में कभी नहीं मिलती। बाहर की दुनिया में जाके समझ में आता है कि किस तरह की जीवन शैली हमको यहाँ मिली थी और किस चीज को हम खो गए हैं बाहर की दुनिया में जाके। तो ये ऐसा भेंट है, तो ऐसे भेंट को भी हमें दोष नहीं दे, अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है ना। वो भेंट स्वाभाविक रूप से वो ऐसे विचार हमारे मन में आ सकते हैं, लेकिन ऐसे हमें इस वृत्ति से थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, थोड़ा कुछ होता ही रहता है, घिस-पिस कुछ हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो मूल प्रेम है वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे से भक्तों के संग में रह के हृदय से यदि भक्ति करेंगे तो सबका हृदय शुद्ध होता जाएगा, सब शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो ऐसा संग, ऐसे वातावरण में दुनिया में कहाँ है, बोलिए, है ना। गोकुल धाम के अलावा कहीं है? ऐसे शुद्ध सात्विक वातावरण में सुंदर सेवा है, सुंदर हरि नाम है, संग है, सब कुछ है यहाँ पे। कितने भाग्यशाली है गोकुल धाम के निवासी। इसलिए इसका पूरा पूरा लाभ हमको उठाना चाहिए। जो भी कठिनाइयां होती हैं उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि ये कृपा है भगवान की और छोटी थोड़ी बहुत कीमत चुका रहे हैं इतने अनमोल भेंट के लिए। जैसे कोई किसी को 10 लाख वाला गाड़ी देता है, ये आपके लिए भेंट है, लेकिन आपको इसके लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे। और आदमी शिकायत करे, क्या इतना पैसा देना, 100 रुपया देना। अरे ये तो 10 लाख की गाड़ी है, तुमको 100 रुपए में मिल रही है और फिर भी बोल रहे, अरे कितना 100 रुपया, कितना ज्यादा है ना। तो उसी तरह से हमें जो मिल रहा है यहाँ, वो अनमोल है।